एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज की ज्ञान गोष्ठी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लेखक की जिनका नाम सुनते ही आधुनिक अफ्रीकी साहित्य का जिक्र आता है। उन्हें इसका पितामह भी कहा जाता है, चिनुआ अचेबे।
बिल्कुल, एक बहुत बड़ा नाम, अल्बर्ट चिनुआ लुमोगु अचेबे, नाइजीरिया के इग्बो समुदाय से, 1930 में जन्म, 2013 तक का जीवन। वो सिर्फ उपन्यासकार, कवि या आलोचक नहीं थे, बल्कि कह सकते हैं कि एक सांस्कृतिक योद्धा थे।
सांस्कृतिक योद्धा, ये दिलचस्प है।
हाँ, क्योंकि उनका काम सिर्फ कहानियां कहना नहीं था, उन्होंने अंग्रेजी उपन्यास को ही, मतलब उसकी जमीन को ही बदल दिया, उसे उपनिवेशवाद की जो छाया थी उससे बाहर निकाला। ये बहुत बड़ा काम था।
और जाहिर है, अचेबे का नाम आते ही सबसे पहले जो किताब याद आती है वो है थिंग्स फॉल अपार्ट।
हाँ, वो तो है ही, उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना।
लेकिन जैसा आपने कहा, उनका काम इससे कहीं ज्यादा फैलावा है, गहरा है। तो आज हम यही कोशिश करेंगे, उनके जीवन को, उनके विचारों को, उनकी विरासत को थोड़ा खोल कर देखें, समझें कि कैसे उन्होंने साहित्य को एक एक औजार की तरह इस्तेमाल किया।
बिल्कुल, और कैसे अफ्रीकी अनुभवों को दुनिया के सामने रखा पूरी गरिमा और सच्चाई के साथ। ये जानना भी जरूरी है कि उनकी कहानी सिर्फ उनकी नहीं है।
अच्छा,
हाँ, ये उस पूरी पीढ़ी की कहानी है जो उपनिवेशवाद के बाद अपनी पहचान, अपनी आवाज, अपना इतिहास उसे दोबारा पाने की कोशिश कर रही थी।
तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। उनका जन्म, उनका माहौल, 1930, दक्षिण पूर्वी नाइजीरिया का ओगिरी गांव। वो समय कैसा था? ब्रिटिश साम्राज्य।
ब्रिटिश साम्राज्य था तो, लेकिन हाँ, उसके ढलान के दिन शुरू हो चुके थे। नाइजीरिया में ब्रिटिश इनडायरेक्ट रूल था।
इनडायरेक्ट रूल यानी अप्रत्यक्ष शासन।
हाँ, मतलब कहने को स्थानीय राजा या मुखिया होते थे, पर असली लगाम अंग्रेजों के हाथ में थे। उन्होंने अपनी एक विदेशी प्रशासनिक व्यवस्था थोप दी थी जो सदियों पुरानी सामाजिक संरचनाओं के ऊपर बैठी थी।
इसका समाज पर क्या असर पड़ा होगा? मतलब तनाव तो रहा होगा।
बहुत ज्यादा। समाज में एक अजीब सा खिंचाव था, एक दोहरापन। सोचिए, एक तरफ चर्च की घंटियां बज रही हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं, और दूसरी तरफ गांव के बुजुर्ग अपनी पारंपरिक कथाएं सुना रहे हैं, पुरानी रीतियों की बात कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का हुक्म भी है और पुरखों की मान्यताएं भी हैं, सब साथ साथ चल रहा था।
और अच्छे भी इसी माहौल में पले बढ़े।
बिल्कुल, इसी सांस्कृतिक चौराहे पर बाइबल की कहानियां भी सुनी और इग्बो लोक कथाएं भी।
और तब साहित्य की दुनिया में अफ्रीका को कैसे देखा जाता था? पश्चिमी लेखक क्या लिख रहे थे?
50 का दशक जब अचेबे ने लिखना शुरू ही किया था, तब तो यूरोपीय लेखकों का ही दबदबा था, और अफ्रीका का चित्रण वो अक्सर, मतलब, बहुत घिसा पिटा होता था।
जैसे कि
या तो उसे एकदम आदिम बर्बर जगह दिखाया जाता था, जैसे शायद जोसेफ कॉनराड की हार्ट ऑफ डार्कनेस में कुछ हद तक है।
हाँ, सुना है उसके बारे में।
या फिर उसे ऐसा दिखाया जाता था जहां के लोग बचकाने हैं, हास्यास्पद हैं, जैसे जॉयस कैरी की मिस्टर जॉनसन में। अफ्रीकी किरदारों को अक्सर यूरोपीय लोगों की नकल करते हुए दिखाया जाता था।
तो अचेबे और उनके समय के जो दूसरे लेखक थे वो इस छवि के खिलाफ खड़े हुए।
हाँ बिल्कुल, ये एक तरह की प्रतिक्रिया थी। एक शक्तिशाली साहित्यिक आंदोलन खड़ा हुआ जिसे हम उत्तर उपनिवेशवादी कहते हैं। ये लेखक अपनी कहानी खुद कहना चाहते थे, अपने नजरिए से।
और इसमें अचेबे की क्या भूमिका थी?
वो इसके अगवा लोगों में से थे। नाइजीरिया में इबादन शहर का मिबारी क्लब था, वो ऐसे लेखकों कलाकारों का अड्डा बन गया था।
अच्छा।
हाँ, वहीं अचेबे की मुलाकात और दोस्ती हुई वोले सोइंका से, जो बाद में नोबेल पुरस्कार जीते, क्रिस्टोफर ओकिग्बो, जेपी क्लार्क, ये सब बड़े नाम थे।
इन सबके मन में नाइजीरिया की आज़ादी 1960 को लेकर बड़ी उम्मीदें होंगी।
शुरुआत में तो जबरदस्त उत्साह था, पर आज़ादी के बाद की जो राजनीति थी, भ्रष्टाचार, और फिर सबसे बुरा हुआ नाइजीरियाई गृह युद्ध, बियाफ्रा युद्ध जिसे कहते हैं, 1967 से 70 तक चला, उसने इस उत्साह को, मतलब, मोहभंग में बदल दिया। अचेबे पर इस युद्ध का बहुत गहरा असर पड़ा, उनके लेखन में भी वो नजर आता है।
और उस दौर के बड़े विचार, पैन अफ्रीकनिज्म, नेग्रीट्यूड।
हाँ, पैन अफ्रीकन चेतना बढ़ रही थी। अमेरिका में हार्लेम रेनेसा की गूंज थी, नेग्रीट्यूड आंदोलन भी था, खासकर फ्रेंच भाषी अफ्रीका में। हालांकि अचेबे का नजरिया थोड़ा अलग था।
अलग कैसे?
नेग्रीट्यूड में अफ्रीकी पहचान का एक तरह का रोमानी महिमा मंडन था। अचेबे ज्यादा यथार्थवादी थे, जमीन से जुड़े हुए थे, और फ्रांस फैनन जैसे विचारकों का भी बहुत प्रभाव था।
चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। उनके परिवार और बचपन पर। आपने कहा ईसाई माहौल था घर में।
हाँ, पिता यशाया ओकाफो अचेबे चर्च मिशनरी सोसाइटी के शिक्षक थे, प्रचारक थे। माँ जैनेट अनेनीची थी। घर में भजन होते थे, बाइबल पढ़ी जाती थी।
लेकिन घर के बाहर इग्बो परंपराएं।
बिल्कुल, घर के बाहर इग्बो संस्कृति की जीवंत दुनिया थी। अपने रीति रिवाज, त्योहार, देवता, मान्यताएं, एक पूरा सामाजिक ढांचा।
तो ये दो दुनियाएं,
हाँ,
उनके अंदर लगातार एक तरह का संवाद चलता रहा होगा।
हाँ, और यही चीज, ये दोहरी दृष्टि, मतलब दोनों संस्कृतियों को समझना, उनके लेखन की बुनियाद बनी। वे पढ़ाई में बहुत तेज थे।
कहाँ पढ़े वो?
पहले गवर्नमेंट कॉलेज उमोहाइया, जो बहुत प्रतिष्ठित था, फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज इबादान, वहाँ उन्हें मेडिसिन पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली थी।
मेडिसिन?
हाँ, लेकिन वो तो लेखक बने, ये बदलाव कैसे आया?
हाँ, ये बड़ा बदलाव था। इबादान यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत बौद्धिक था, बहसें होती थीं। वहीं उन्होंने ये भी महसूस किया कि कैसे औपनिवेशिक व्यवस्था अफ्रीकी संस्कृति को कमतर समझती है।
अच्छा, शायद इसी अनुभव ने उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने मेडिसिन छोड़ दी और अंग्रेजी साहित्य, इतिहास और धर्मशास्त्र पढ़ने का फैसला किया।
ये तो एक तरह से अपनी जड़ों की ओर लौटना हुआ, भाषा और कहानी की ओर।
हाँ, कह सकते हैं एक तरह की बौद्धिक पुनर्प्राप्ति। उन्होंने उन्हीं औजारों को चुना, भाषा, कहानी, जिनका इस्तेमाल उनके लोगों को गलत ढंग से दिखाने के लिए किया गया था, ताकि वो उन्हीं से अपना सच कह सकें। वहीं यूनिवर्सिटी में उन्होंने कॉनराड, कैरे जैसे लेखकों के काम में वो नस्लवादी चित्रण पहचाना
और तय किया कि इसका जवाब देना है।
बिल्कुल।
तो अब आते हैं उनके सबसे बड़े योगदान पर। उन्हें आधुनिक अफ्रीकी साहित्य का जनक क्यों कहते हैं? क्या था उनका सबसे महत्वपूर्ण काम?
देखिए, उनका सबसे गहरा असर जो पड़ा वो था अंग्रेजी उपन्यास का वी उपनिवेशीकरण, डीकॉलोनाइजेशन।
वी उपनिवेशीकरण, इसे थोड़ा और समझाएंगे?
मतलब ये कि उन्होंने दिखाया कि अंग्रेजी भाषा, जो शासकों की भाषा थी, उसे अफ्रीकी अनुभव बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, पूरी गरिमा, पूरी जटिलता के साथ। ये कोई छोटी बात नहीं थी। उन्होंने पीढ़ियों को रास्ता दिखाया कि उनकी अपनी कहानियां, उनका अपना इतिहास भी महान साहित्य बन सकता है।
पर ये किया कैसे उन्होंने? क्या सिर्फ विषय बदल दिया?
नहीं, सिर्फ विषय नहीं, भाषा के स्तर पर भी कमाल किया। उन्होंने एक नई अंग्रेजी गढ़ी, उनके अपने शब्दों में, ऐसी अंग्रेजी जो मेरे अफ्रीकी अनुभव का बोझ उठा सके।
नई अंग्रेजी, ये कैसे संभव है?
उन्होंने अंग्रेजी के ढांचे को नहीं बदला, पर उसमें इग्बो भाषा की लय, मुहावरे, कहावतें, यहां तक कि सोचने का तरीका भी बड़ी खूबसूरती से पिरो दिया।
अच्छा।
हाँ, जब आप उनकी अंग्रेजी पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये अंग्रेजी है, पर इसकी आत्मा अफ्रीकी है। ये सिर्फ स्टाइल नहीं था, ये एक राजनीतिक कदम था। ये कहना था कि हमारी सोच, हमारी भाषा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
यानी भाषा को ही हथियार बना लिया।
बिल्कुल, और साथ ही उन्होंने लेखक की भूमिका को भी बदला। उनके लिए लेखक सिर्फ मनोरंजन करने वाला नहीं था।
तो क्या था?
लेखक एक शिक्षक था, समाज का आलोचक, उसकी अंतरात्मा की आवाज। उनका पूरा काम सत्ता, न्याय और उन त्रासदियों पर सवाल उठाता है जो तब होती हैं जब एक संस्कृति दूसरी पर हावी होने की कोशिश करती है।
उनके आलोचनात्मक लेखन की भी बात होती है, खासकर कॉनराड पर उनका लेख।
हाँ, 1975 का वो निबंध एन इमेज ऑफ अफ्रीका, रेसिज्म इन कॉनराड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस, उसने तो पश्चिमी साहित्य जगत में तहलका मचा दिया था।
कैसे?
उन्होंने बड़े साहस से हार्ट ऑफ डार्कनेस जैसी किताब, जिसे क्लासिक माना जाता है, उसके अंदर छिपे नस्लवाद को उजागर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये महान साहित्य नहीं हो सकता अगर ये इंसानों के एक समूह को अमानवीय दिखाता है। इस निबंध ने साहित्य और साम्राज्यवाद के रिश्ते पर बहस को हमेशा के लिए बदल दिया।
और आपने पहले एक तकनीक का जिक्र किया था, फ्री इंडहेक डिस्कोर्स।
हाँ, ये लिखने का एक तरीका है जिससे लेखक हमें पात्र के विचारों और भावनाओं को सीधे महसूस कराता है, बिना ये कहे कि उसने सोचा या उसे लगा।
अच्छा।
अचेबे ने इसका इस्तेमाल करके ओकोंकवो जैसे पात्रों की दुनिया को, उनकी सोच को, पाठक के करीब ला दिया। हमें लगता है हम उनके मन में झांक रहे हैं। इससे वो पात्र हमें अजनबी या कमतर नहीं लगते।
ये तो बहुत प्रभावी तरीका है। चलिए अब उनकी मुख्य रचनाओं पर आते हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट से शुरू करते हैं।
थिंग्स फॉल अपार्ट 1958। ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं था, ये एक ऐलान था। कहानी है ओकोंकवो की, एक इग्बो नेता जो बहुत मेहनती है, सम्मानित है, पर अपनी परंपराओं से बुरी तरह चिपका हुआ है, बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाता।
और कहानी क्या है?
कहानी दिखाती है कि कैसे यूरोपीय मिशनरियों और शासकों के आने से सिर्फ ओकोंकवो की जिंदगी नहीं, बल्कि उसका पूरा समाज, पूरा कबीला, उसकी संस्कृति सब बिखर जाता है। थिंग्स फॉल अपार्ट।
इसकी सबसे खास बात क्या थी?
खास बात ये थी कि इसने इग्बो समाज को बाहर से नहीं, अंदर से दिखाया, एक जटिल व्यवस्थित सभ्यता के रूप में, जिसके अपने कानून, अपनी मान्यताएं, अपना दर्शन था। अचेबे ने दिखाया कि ये कोई बर्बर समाज नहीं था जिसे सभ्य बनाने की जरूरत थी, बल्कि बाहरी ताकत ने आकर इसे तोड़ा।
और दुनिया भर में इसकी क्या प्रतिक्रिया रही?
जबरदस्त। करोड़ों प्रतियां बिकी, 50 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसने अचेबे को रातों रात दुनिया भर में मशहूर कर दिया और अफ्रीकी साहित्य को एक नई पहचान दी।
इसके बाद कौन सी किताबें आईं?
ठीक इसके बाद आई नो लॉन्गर एट ईज, 1960। ये एक तरह से थिंग्स फॉल अपार्ट की अगली पीढ़ी की कहानी है। ओकुंकू का पोता है ओबी।
अच्छा, पोता।
हाँ, वो इंग्लैंड से पढ़कर नाइजीरिया लौटता है, आधुनिक शहर लागोस में, पर वो अपनी जड़ों और पश्चिमी शिक्षा के बीच फंसा हुआ है, कहीं का नहीं रहा। नो लॉन्गर इट इज उपन्यास दिखाता है कैसे वो शहर के भ्रष्टाचार और दबावों का शिकार होता है।
ये तो आज भी बहुत प्रासंगिक लगता है।
बिल्कुल। फिर आई एरो ऑफ गॉड, 1964। इसे कई लोग कलात्मक रूप से उनका सबसे बेहतरीन काम मानते हैं।
इसमें क्या है?
ये एजोलू नाम के एक पुजारी की कहानी है। वो अपने देवता और लोगों के प्रति वफादार है, पर उसे औपनिवेशिक प्रशासन के साथ भी तालमेल बिठाना है। ये पारंपरिक सत्ता, नई राजनीतिक ताकत और व्यक्तिगत अभिमान के टकराव की बहुत गहरी कहानी है।
तो उन्होंने ज्यादातर पारंपरिक समाज के टूटने पर ही लिखा?
नहीं, ऐसा नहीं है। वे समकालीन मुद्दों से भी उतने ही जुड़े थे। ए मैन ऑफ द पीपल, 1966 को लीजिए।
हाँ,
ये एक तीखा राजनीतिक व्यंग्य है। आजादी के बाद एक काल्पनिक अफ्रीकी देश में जो भ्रष्टाचार फैला है, नेताओं की मौका परस्ती है, उस पर जबरदस्त चोट है।
और इसकी सबसे मजेदार बात,
मजेदार और थोड़ी अजीब भी, उपन्यास का अंत होता है एक मिलिट्री तख्तापलट से, और किताब छपने के कुछ ही दिन बाद नाइजीरिया में सच में तख्तापलट हो गया।
सच में?
कमाल है।
हाँ,
कुछ लोगों ने तो मजाक में कहा कि कहीं अचेबे ही तो इस साजिश में शामिल नहीं थे।
फिर उनके उपन्यासों में एक लंबा गैप आया है ना, करीब 20-21 साल का।
हाँ, बियाफ्रा युद्ध का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा था। वो बहुत निराश थे नाइजीरिया के हालातों से। इस दौरान उन्होंने कविताएं लिखी, निबंध लिखे, बच्चों के लिए लिखा, पर उपन्यास नहीं।
और फिर वापसी हुई?
हाँ, 1987 में आया एंथिल्स ऑफ द सवाना। ये एक बहुत परिपक्व रचना है। इसमें वो एक आधुनिक अफ्रीकी देश में मिलिट्री तानाशाही की नाकामियों को देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि देश को फिर से बनाने में बुद्धिजीवियों, कहानीकारों और खासकर महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है।
उस दौर के और बड़े अफ्रीकी लेखक कौन थे जिनके साथ अचेबे का नाम लिया जाता है?
नाइजीरिया में ही वोले सोइंका थे, क्रिस्टोफर ओकिगबो, जेपी क्लार्क, गैब्रियल ओकारा। केन्या में न्यूगुगी वथियोंगो बहुत बड़ा नाम थे। दक्षिण अफ्रीका में नादिन गोडेमा।
और निग्रिट्यूड आंदोलन के नेता जैसे सेनेगल के सेंघोर।
हाँ, वो फ्रेंच भाषी अफ्रीका में थे, पर जैसा मैंने कहा, चेबे का नजरिया थोड़ा अलग था। सेंगोर वगैरह अफ्रीकी संस्कृति का थोड़ा रोमानी चित्रण करते थे। अचेबे ज्यादा यथार्थवादी थे, वो समाज की कमजोरियों को भी दिखाते थे।
ये महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं उनकी विरासत की। आज अचेबे कितने प्रासंगिक है?
उनकी विरासत तो बहुत बड़ी है। थिंग्स फॉल अपार्ट की सफलता अपनी जगह है, पर शायद सबसे बड़ा असर अफ्रीका और अफ्रीकी डायस्पोरा पर पड़ा। उन्होंने लेखकों की एक पूरी पीढ़ी को हिम्मत दी।
हिम्मत किस बात की?
अपनी कहानी कहने की, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने अनुभव को बिना किसी शर्म या झिझक के दुनिया के सामने रखने की। उन्होंने उन लोगों को आवाज दी जिनकी आवाज दबा दी गई थी।
क्या आज के लेखक भी उनसे सीखते हैं?
बिल्कुल। आज की मशहूर नाइजीरियाई लेखिका हैं चिमामांडा गोजी अदीची। वो तो अचेबे को अपना आध्यात्मिक पिता मानती हैं। कहती हैं अचेबे को पढ़कर ही उन्हें लगा कि उनके जैसे साधारण नाइजीरियाई लोगों की जिंदगी भी साहित्य का विषय हो सकती है।
और उनके विचार, सांस्कृतिक टकराव, भ्रष्टाचार, कहानी कहने की ताकत, ये आज कितने मायने रखते हैं?
मुझे लगता है आज शायद पहले से भी ज्यादा। दुनिया जुड़ी हुई तो है, पर बंटी हुई भी बहुत है। पहचान के मुद्दे, सांस्कृतिक मतभेद, सत्ता का दुरुपयोग, ये सब समस्याएं आज भी उतनी ही गंभीर हैं। अचेबे के सवाल आज भी जिंदा हैं।
तभी उनकी किताबें आज भी पढ़ाई जाती हैं।
हाँ बिल्कुल, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में। सांस्कृतिक विनियोग, कल्चरल अप्रोप्रिएशन पर जो बहस आज चल रही है, या लेखक की सामाजिक जिम्मेदारी क्या हो, इन सब मुद्दों की गूंज अचेबे के काम में मिलती है।
अचेबे अपने बातों को बड़े सीधे और यादगार ढंग से कहते थे। उनके कुछ मशहूर कथन।
हाँ, एक तो बहुत ही मशहूर है जो उनके पूरे काम का सार है, जब तक शेरों के अपने इतिहासकार नहीं होंगे, शिकार का इतिहास हमेशा शिकारी का ही महिमा मंडन करेगा।
वाह, क्या बात है,
है ना? मतलब साफ है, जब तक कमजोर अपनी कहानी खुद नहीं कहेगा, इतिहास ताकतवर ही लिखता रहेगा।
और थिंग्स फॉल अपार्ट से कोई पंक्ति?
उसमें ओकोंकोवो का दोस्त है ओबियरी का, वो बड़े दर्द से कहता है, गोरा आदमी बहुत चालाक है, वो चुपचाप शांति से अपने धर्म के साथ आया, हम उसकी बेवकूफी पर हंसे, उसे रहने दिया, अब उसने हमारे भाइयों को जीत लिया है और हमारा कबीला अब एक होकर काम नहीं कर सकता। उसने उन चीजों पर चाकू रख दिया है जिन्होंने हमें एक साथ रखा था, और हम बिखर गए हैं।
ये तो औपनिवेशिक चाल को दिखाता है।
बिल्कुल, कैसे फूट डालकर राज किया। एक और कहावत वो अक्सर इस्तेमाल करते थे, एरो ऑफ गॉड में है, दुनिया एक नाचते हुए नकाब की तरह है, यदि आप इसे अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो आप एक जगह खड़े नहीं रहते।
इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब किसी भी चीज को समझने के लिए अलग अलग नजरिए से देखना जरूरी है, एक ही जगह खड़े रहकर पूरी तस्वीर नहीं दिखती। और एक और सीधी सी बात जो वो चाहते थे, खासकर नए लेखकों से, अगर तुम्हें किसी की कहानी पसंद नहीं है तो अपनी खुद की लिखो।
सीधा संदेश, अपनी आवाज उठाओ।
बिल्कुल।
उनके जीवन से जुड़े कुछ और रोचक बातें, कम ज्ञात पहलू।
हमने बात की थी कि कैसे उन्होंने मेडिसिन छोड़ी। एक और बात, थिंग्स फॉल अपार्ट की जो हाथ से लिखी ओरिजिनल कॉपी थी वो लंदन में एक टाइपिंग एजेंसी में खो गई थी कुछ महीनों के लिए।
अरे, फिर मिली कैसे?
किस्मत से मिल गई, सोची अगर ना मिलती तो
दुनिया एक महान उपन्यास से महरूम रह जाती। और बियाफ्रा युद्ध और उस दुर्घटना के बारे में भी बताइए।
हाँ, बियाफ्रा युद्ध के समय वो सिर्फ लिख नहीं रहे थे, वो बियाफ्रा के राजदूत बनकर दुनिया भर में घूम रहे थे, अपने लोगों की आवाज उठा रहे थे। फिर 1990 में नाइजीरिया में कार एक्सीडेंट हुआ।
ओह।
हाँ, उसमें उन्हें स्पाइनल कॉर्ड में चोट आई और वो कमर से नीचे पैरालाइज हो गए। फिर वो अमेरिका चले गए, वहीं पढ़ाते रहे।
और उन्होंने नाइजीरिया का राष्ट्रीय सम्मान लेने से मना कर दिया था।
हाँ, दो बार, 2004 और 2011 में। नाइजीरिया का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान था, कमांडर ऑफ द फेडरल रिपब्लिक, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, कहा कि जिस सरकार में इतना भ्रष्टाचार और कुशासन हो उससे वो सम्मान नहीं ले सकते।
ये उनके नैतिक बल को दिखाता है।
यकीनन।
तो अचेबे का काम, उनका जीवन हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है।
बिल्कुल, शायद ये सोचने पर कि आज की इस दुनिया में जहाँ इतनी आवाजें हैं, इतना शोर है, वहाँ अपनी कहानी, अपनी सच्चाई को ईमानदारी से कहना कितना जरूरी है, जैसे अचेबे ने कहा।
और वो नई अंग्रेजी जो उन्होंने बनाई।
हाँ, वो आज भी एक मिसाल है कि कैसे अपनी संस्कृति को, अपनी पहचान को किसी दूसरी भाषा में भी व्यक्त किया जा सकता है।
और ये सवाल भी तो है कि कहानी कहता कौन है, नैरेटिव पर नियंत्रण किसका है, ये लड़ाई शायद आज भी जारी है ना?
बिल्कुल, ये लड़ाई शायद कभी खत्म नहीं होगी, और अचेबे हमें याद दिलाते हैं कि इस लड़ाई में कहानी कहना कितना जरूरी हथियार है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।